صرف ایک ہی روح مطلق میں عقیدت اور خود سپردگی کا پیغام دینے والی گیتا سب کو پاک و صاف بنانے کی کھلی دعوت دیتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی رہنے والے امیر خواہ غریب، اشرف اور غیر اشرف، شریف النفس اور گنہگار، عورت و مرد، متقی و بد کردار، سب کا اس میں دخل ہے۔ خاص طور سے گیتا گناہگاروں کی ہی نجات کا سہل راستہ بتاتی ہے۔ شریف النفس تو یاد کرتے ہی ہیں، پیش ہے اسی گیتا کی بے مثل تشریح، یتھارتھ گیتا، حقیقی گیتا کا سی ڈی نشریہ۔
ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अथ द्वितीयो अध्याय, दूसरा बाब। बाब अव्वल गीता की तरफ पहला कदम है, जिसकी शुरुआत में अमल के राह रो को महसूस होने वाली उलझनों की अक्कासी है। जंग करने वाले सभी कौरव और पांडव थे, लेकिन शक व शुबह का किरदार महज अर्जुन है। इश्क ही अर्जुन है। इलाह के मुताबिक उनसियत ही अमल के राह रो को मैदान और मैदान के आलिम के टकराव के लिए आमादा करती है। उनसियत इब्तदाई दर्जा है। काबिल एहतराम महाराज जी कहते थे, नेक अहल जिंदगी में रहते हुए कलालत होने लगे, अश्क रवां होता हो, हलक बंद होता हो, तो समझना कि यहीं से याद इलाही की इब्तिदा हो गई। उनसियत में सब कुछ आ जाता है। उसमें दीने उसूल, सोहबत नेक, ख्याल सभी मौजूद होंगे। उनसियत के पहले कदम में खानदान की रगबत खलल पैदा करती है। पहले सभी चाहते हैं कि हम इस मुमताज हकीकत को हासिल कर लें, लेकिन आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन महबूब ताल्लुकात को तर्क करना होगा। तब उस पर नाउम्मीदी तारी हो जाती है। वो पहले से जो कुछ फर्ज व फेल, धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में इत्मीनान करने लगता है। अपनी मोहब्बत को तस्दीक करने के लिए वो मुरव्वजा कदामतों को बतौर सबूत भी पेश करता है, जैसा अर्जुन ने किया। खानदानी फर्ज अबदी है। जंग से अबदी दीन का खात्मा होगा, खानदान की बर्बादी होगी, बदउनवानी फैलेगी। यह अर्जुन का जवाब नहीं था, बल्कि मुर्शिद की कुर्बत से पहले का अपनाया गया महज एक बुरा रिवाज था। इन्हीं बुरे रिवाजों में फंसकर इंसान अलग अलग मजहब, मुख्तलिफ फिरकों, छोटी बड़ी दलबंदी और बेशुमार जातों को गढ़ लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से दीन तबाह हो जाता है, तो कहीं रोटी पानी से दीन बर्बाद हो जाता है। तो क्या अछूत या छूने वालों की गलती है? हरगिज नहीं। गलती हमारे अंदर शक पैदा करने वालों की है। दीन के नाम पर हम बुरे रिवाज के शिकार हैं, लिहाजा गलती हमारी है। मर्द खुदा बुद्ध के वक्त में केश कंबल नाम का एक फिरका था, जिसमें बाल को बढ़ाकर कंबल की तरह इस्तेमाल करने को मुकम्मल होने का पैमाना माना जाता था। गोवृतिक गाय की तरह रहने वाला था, तो कोई कुक्कर वर्तक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। इल्म तसव्वुफ का इनसे कोई वास्ता नहीं है। फिरके और बुरे रिवाज पहले भी थे, आज भी हैं। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण के दौर में भी फिरके थे, बुरे रिवाज थे। इनमें से कुछ बुरे रिवाज का शिकार अर्जुन भी था। उसने चार दलीलें पेश की। एक, ऐसी जंग से अबदी दीन तबाह हो जाएगा। दो, दोगला पैदा होगा। तीन, मरने के बाद जिर्म को पानी देने का रिवाज पिंडोदक क्रिया का खात्मा होगा। चार, हम लोग खानदान की बर्बादी के जरिए बहुत बड़ा गुनाह करने को आमादा हुए हैं। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने फरमाया, संजय उवाच।
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
रहम दिल, अशकों से लबरेज बेकरार आंखों वाले उस अर्जुन के मुतालिक मधुसूदन, गुरूर का खात्मा करने वाले श्री कृष्ण ने यह कौल फरमाया। श्री भगवान उवाच।
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं अकीर्तिकरमर्जुन।
अर्जुन, इस गैर मुसावी मकाम में तुझमें ये नासमझी कहां से आ गई? गैर मुसावी मकाम यानी जिसकी बराबरी का तकलीफ में कोई मकाम है ही नहीं। मावराई है मकसूद जिसका, उस गैर इख्तलाफी मकाम पर तेरे अंदर जहालत कहां से आ गई? जहालत क्यों? अर्जुन, तू अबदी दीन की हिफाजत के लिए कमर बस्ता है क्या? अबदी दीन की हिफाजत के लिए जी जान से तैयार होना जहालत है? श्री कृष्ण कहते हैं, हां यह जहालत है। ना तो मुतवक्का इंसानों के जरिए इसका बर्ताव किया गया है, ना जन्नत ही अता करने वाला है और ना ये शोहरत ही अता करने वाला है। नेक राह पर जो मजबूती के साथ कायम है उसे अफजल आर्य कहते हैं। खानदान के लिए मरना मिटना अगर जहालत ना होती तो अजीम इंसान उस पर जरूर चले होते। अगर खानदानी फर्ज ही हक होता तो जन्नत और भलाई का ला दर्जा ना श्रेणी जरूर बनता। यह शोहरत अता करने वाला भी नहीं है। मीरा याद इलाही में लग गई तो लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जिस खानदान और इज्जत के लिए मीरा की सास मुसीबत का इजहार करती हुई रो रही थी, आज उस खानदानी सास को कोई नहीं जानता। मीरा को सारी दुनिया जानती है। ठीक इसी तरह खानदान के लिए जो परेशान है उनकी भी शोहरत कब तक रहेगी? जिसमें शोहरत नहीं भलाई नहीं। सोलह इंसानों ने भूल कर भी जिसका बर्ताव नहीं किया तो साबित है कि वो जहालत है। लिहाजा
क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठत् परन्तप।
अर्जुन, नामर्द मत बन। क्या अर्जुन नामर्द था? क्या आप मर्द हैं? नामर्द वो है जिसमें मर्दानगी ना हो। सब अपनी समझ से मर्दानगी ही तो करते हैं। काश्तकार रात दिन खून पसीना एक करके खेत में मर्दानगी ही तो करता है। कोई रोजगार में मर्दानगी समझता है तो कोई अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके मर्द बनता है। जिंदगी भर मर्दानगी करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। जाहिर है ये मर्दानगी नहीं है, खालिस मर्दानगी है। खुद शनासी गार्गी एक कदीमी दौर की आलिमा ने याद नवल किया, कदीमी दौर के आलिम फाजिल मर्द खुदा से कहा, नपुंसक पुमान ज्ञेयो यो ना वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तस्मानंदात्मा नम व्ययम। वो मर्द होते हुए ना मर्द है जो दिल में कायम रूह को नहीं पहचानता। रूह ही बशक्ले मर्द आदमी खुद पुरनूर आला पुरलुत्फ और गैर मरई है। इसे हासिल करने की कोशिश ही मर्दानगी है। अर्जुन, तू नामर्दी का हामिल ना बन, ये तेरे लिए वाजिब नहीं है। ऐ आला रियाजत कश, दिल की हकीर कमजोरी को तर्क कर, जंग के लिए खड़ा हो, रगबत को तर्क कर, यह महज दिल की कमजोरी है। इस पर अर्जुन ने तीसरा सवाल खड़ा किया। अर्जुन उवाच,
कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।
गुरूर को खत्म करने वाले मधुसूदन, मैं मैदान जंग में जद भीष्म और अल्लामा द्रोण से किस तरह तीरों से जंग करूंगा, क्योंकि अरिसुदन दोनों ही काबिले एहतराम हैं। शिर्क ही द्रोण है, माबूद अलग है, हम अलग हैं। शिर्क का यह एहसास ही हुसूल की तरगीब का इब्तदाई मखरज है। यही अल्लामा मखरज द्रोण की सखालत है। शक ही भीष्म है, जब तक शक है तभी तक बच्चे खानदान रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में शक ही जरिया है। रूह उन्हीं को काबिल एहतराम मानकर उनके साथ रहती है। ये पिदर हैं, अजदाद हैं, खानदान के मौलिम हैं वगैरह। रियाजत के तकमीली दौर में गुरु न चेला, पुरुष अकेला, न कोई उस्ताद न शागिर्द, सिर्फ तन्हा इंसान है। न बंधु न मित्रम, गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब कल्बी रुझान उस आला मसरत में महू हो जाता है, तब न मुर्शिद इल्म देने वाला और न शागिर्द लेने वाला ही रह जाता है। यही माओराई की हालत है। मुर्शिद की सकालत हासिल कर लेने पर सकालत एक जैसी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में कयाम करेगा, जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही हासिल करने वाला अजीम इंसान हो जाता है। ऐसी हालत में मुर्शिद की जात भी तहलील हो जाती है, सकालत दिल में रवां हो जाती है। अर्जुन मुर्शिद के ओहदे की ढाल बनाकर इस जंग में शामिल होने से कतराना चाहता है। वो कहता है,
गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्।
इन काबिले ताजीम मौलिम हजरात को ना मारकर मैं इस दुनिया में भीख का दाना भी बेहतर समझता हूं। यहां भीख का मतलब पेट पालने के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सालेह इंसानों की छोटी मोटी खिदमत के बदले उनसे भलाई की इल्तिजा ही भीख है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अनाज वाहिद परवरदिगार है, जिसे हासिल करने के लिए रूह हमेशा के लिए आसूदा हो जाती है, कभी गैर आसूदा नहीं रहती। हम अजीम इंसानों की खिदमत और उनसे इल्तिजा के जरिए धीरे धीरे खुदाई नौशाब को हासिल करें, लेकिन यह खानदान ना छूटे, यही अर्जुन के भीख के अनाज की ख्वाहिश है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। वो चाहते हैं कि खानदानी मोहब्बत के ताल्लुकात को ना छोड़ना पड़े और नजात भी रफ्ता रफ्ता हासिल हो जाए, लेकिन राह रो के लिए जिसके तासुरात संस्कार उनके ऊपर हैं जिसमें टक्कर लेने की सलाहियत है, जिनके बर्ताव के तौर तरीके में छतरीपन की रवानी है, उसके लिए इस भीख के अजनास का उसूल नहीं है। खुद ना करके इल्तिजा करना भीख का अनाज है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्मदायाद सूत्त में इस भीख के अनाज को अमीश दायाद, गोश्त की भीख कहकर काबिले नफरत माना है, जबकि जिस्म को जिंदा रखने के ख्याल से सभी भिखारी थे। इन काबिले एहतराम लोगों को मारकर मिलेगा क्या? इस दुनिया में खूं आलूदा दौलत और ख्वाहिशात के ऐशो इशरत ही तो लुत्फ उठाने के लिए मिलेंगी। अर्जुन शायद सोचता था कि याद रब से ही मादियाती सुकून की तादाद में इजाफा होगा। इतनी जद्दोजहद के बाद भी इस जिस्म की मुकव्वी दौलत और ख्वाहिश के ऐश ही तो मिलेंगे। वो फिर दलील पेश करता है।
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।
ये भी तय नहीं है वो ऐश मिलेगा ही, ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना बेहतर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो जहालत साबित हो गया। ये भी मालूम नहीं कि हम ही फतेह हासिल करेंगे, ख्वाह उन्हें ही फतेह हासिल होगी जिन्हें हम मारकर जीना भी नहीं चाहते। वो ही धृतराष्ट्र की औलादें हमारे सामने खड़ी हैं। जहालत की तमसील धृतराष्ट्र से पैदा फिरेफ्तगी वगैरह के साथ अपने लोगों की जमातें मिट ही जाएंगी, तब हम जीत कर ही क्या करेंगे? अर्जुन फिर सोचता है, जो कुछ हमने कहा शायद ये भी जहालत हो, लिहाजा गुजारिश करता है।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
बकेली बुजदिली की बुराइयों के जेर असर बर्बाद फितरत वाला, दीन के बारे में हर तरह से फरेफ्ता कल्ब वाला, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो कुछ तयशुदा आला इफादी हो वो वसीला मुझे बताइए। मैं आपका खासुल खास शागिर्द हूं, आपकी पनाह में हूं, मुझे संभालिए। सिर्फ नसीहत ना दीजिए बल्कि जहां लड़खड़ाऊं वहां संभालिए। लाद दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले। गर कहीं गठड़ गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा? ऐसी ही सुपुर्दगी अर्जुन की है। यहां अर्जुन ने खुद को पूरी तरह सुपुर्द कर दिया। अभी तक वो श्री कृष्ण को हम वजन ही समझता था। सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ उलूम में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहां उसने अपनी लगाम श्री कृष्ण को हकीकतन सुपुर्द कर दी। मुर्शिद आखिरी मंजिल तक दिल में मकाम कर रियाजत कश के साथ चलते हैं। अगर वो साथ ना रहें तो रियाजत को मंजिल ना मिले। किसी दोशीजा के खानदान वाले जिस तरह शादी निकाह तक उसको एहतियात की नसीहत देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी तरह मुर्शिद अपने शागिर्द की बातिन से रथबाण बनकर उसे दुनिया के पेश व खम से बचाकर मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अर्जुन गुजारिश करता है कि बंदा परवर, एक बात और है।
नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
जमीन बिना किसी झंझट के माल उजर से भरे इक्तदार को और देवताओं के सरताज इंद्र के मकाम को पाकर भी मैं इस तरीके को नहीं देखता जो मेरे हवास को यह खुश करने वाली खलिश को दूर कर सके। जब खलिश बनी ही रही तो सब लेकर ही मैं क्या करूंगा। अगर इतना ही मिलना है तो माफ करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। संजय उवाच।
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नयोत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
संजय बोला, ऐ शाह, फिरेफ्तगी की तमसील सियाह रात पर फतेह हासिल करने वाले अर्जुन ने दिल के अलीम श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद मैं जंग नहीं करूंगा खामोश हो गया। अभी तक अर्जुन की नजर पुराण के मुतालिक है जिसमें मजहबी मामलात के साथ ऐशो इशरत को हासिल करने का उसूल है जिसमें जन्नत ही सब कुछ मानी जाती है, जिस पर श्री कृष्ण रोशनी डालेंगे कि यह नजरिया भी गलत है।
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
उसके बाद ऐ शाह, आलिमुल कुलूब जोग के मालिक श्री कृष्ण ने दोनों तरफ की फौजों के दरमियान में इस गमजदा अर्जुन से हंसते हुए ये बात कही। श्री भगवान वाच।
अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
अर्जुन, तू ऐसे लोगों के लिए गमजदा है जो गम करने के काबिल नहीं है, जिनके लिए गम किया जाए और आलिमों जैसी बातें करता है। लेकिन अकल से बहरावर आलिमों जिनकी जान चली गई है उनके लिए और जिनके अंदर जान बाकी है उनके लिए भी गम नहीं करते, क्योंकि एक दिन वो भी फना हो जाएंगे। तू आलिमों जैसी महज बातें करता है, दर हकीकत आलिम है नहीं, क्योंकि
नत्वेवाहं जातुनासं नत्वन्ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
ऐसा भी नहीं है कि मैं यानी मुर्शिदे कामिल किसी दौर में नहीं था। क्वाह तू आशिक अनुरागी अहल या जनाधिपा, शाह लोग यानी मलकाते रदिया वाली खसलत में पाया जाने वाला गुरूर नहीं था, और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। मुर्शिद कामिल हमेशा रहता है, आशिक हमेशा रहते हैं। यहां जोग के मालिक ने जोग की अबदियत पर रोशनी डालते हुए मुस्तकबिल में भी इसकी मौजूदगी पर जोर दिया। मरने वालों के लिए गम न करने की वजह बताते हुए उन्होंने फरमाया,
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति।
जैसे जी रूह के इस जिस्म में बचपना जवानी और ज़ईफ़ी की हालत होती है, वैसे ही मुख्तलिफ अजसाम के हुसूल में साबित कदम इंसान फिरेफ्ता नहीं होता है। कभी आप बच्चे थे, रफ्ता रफ्ता जवान हुए, तब आप फना तो नहीं हो गए, फिर ज़ईफ़ हुए, انسان ایک ہی ہے، اسی طرح ذرا سا بھی فرق نئے جسم کے حصول پر نہیں پڑتا۔ جسم کا یہ تغیر تب تک چلے گا جب تک تغیر سے ماورا چیز نہیں حاصل ہو جاتی۔
ماترا سپرشاستو کونتے شیتوشن سکھ دکھ دا آگما پائنو نتیا تان ستتی کشسو بھارت۔
کنتی کے پسر سکھ دکھ سردی اور گرمی کو عطا کرنے والے حواس اور ان کے موضوعات کی اتفاق تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، وقتی ہیں۔ لہذا بھرت کے خاندان والے ارجن، تو اس کو ترک کر۔ ارجن حواس اور اس کے موضوعات کے اتفاق کے ذریعے حاصل ہونے والے سکون کو یاد کر کے ہی بے قرار تھا۔ خاندانی فرض، خاندانی معلموں کی پرستش وغیرہ حواس کے لگاؤ کے تحت ہیں، یہ وقتی ہیں، جھوٹے ہیں، فانی ہیں۔ موضوعات کا اتفاق نہ ہمیشہ ملے گا اور نہ ہمیشہ حواس میں حاصل کرنے کی طاقت ہی رہے گی۔ لہذا ارجن، تو ان کو ترک کر، برداشت کر۔ کیوں؟ کیا ہمالے کی جنگ تھی جو ارجن سردی برداشت کرتا؟ کیا یہ ریگستان کی جنگ ہے جہاں ارجن گرمی برداشت کرے؟ کرکشیتر، میدان جنگ، جیسا کہ لوگ عام طور پر باہر بتاتے ہیں، معتدل جگہ ہے۔ تمام سب 18 دن تو جنگ ہوئی، اتنے میں کہاں سردی گرمی بیت گئی؟ در حقیقت سردی گرمی، تکلیف و آرام، عزت ذلت کا برداشت کرنا ایک جوگی پر منحصر کرتا ہے۔ یہ دل کی دنیا کی جنگ کی عکاسی ہے۔ اس خارجی جنگ کے لیے گیتا نہیں کہتی، یہ میدان اور عالم میدان کی جنگ ہے، جس میں دنیاوی دولت کا پوری طرح سے خاتمہ کر، معبود میں مقام دلا کر، روحانی دولت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ جب عیوب ہی نہیں تو ہم ذات خصائل کس پر حملہ کریں؟ لہذا تکمیل کے ساتھ ہی وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ گیتا باطنی دنیا کی جنگ کی عکاسی ہے، اس ایثار سے حاصل کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس پر شری کرشن کہتے ہیں،
یم ہی نا ویتھینتے تے پروشم پروشرشو سمدکھ سکھم دھیرم سومرتتوائے کلپتے۔
کیونکہ اے مرد آدمی، آرام اور تکلیف کو یکساں سمجھنے والے جس ثابت قدم انسان کو حواس اور موضوعات کے اتفاق غمزدہ نہیں کر پاتے، وہ موت سے ماورا لافانی عنصر کو حاصل کرنے کی صلاحیت والا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے شری کرشن نے ایک حصول یابی عنصر لافانی کا ذکر کیا۔ ارجن سوچتا تھا کہ جنگ کے ثمرے میں جنت نصیب ہوگی یا زمین، لیکن شری کرشن کہتے ہیں نہ جنت ملے گی نہ زمین، بلکہ جاویدانی ملے گی۔ جاویدانی کیا ہے؟
ناستو ویدیتے بھاو نا بھاو ویدیتے ستہ اُبھیورپی درشٹونتہ توانیوستتودرشیبھی۔
ارجن باطل کا وجود نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اسے روکا نہیں جا سکتا، اور حق کے تینوں تسلسل وقت میں کمی نہیں ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ارجن نے سوال کیا، کیا بندہ پرور ہونے کی حیثیت سے آپ کہتے ہیں؟ شری کرشن نے بتایا، मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का यह फर्क हमारे साथ साथ हकशनास इंसानों के जरिए भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने उसी हकीकत को दोहराया जिसे मुबस्सिर इंसानों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक हकशनास अजीम इंसान थे। उनसुरे आला रूह मुतलक का बदी ही दीदार करके उस मकाम पर फायज इंसान हकशनास कहलाते हैं। हक और बातिल क्या है इस पर फरमाते हैं,
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
लाफानी तो वो है जिससे ये सारी दुनिया जारी वो सारी है। इस अव्ययस्य लाफानी को फना करने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन इस लाफानी जावेदानी का नाम क्या है, वो कौन है?
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत।
लाफानी लासबूत हमेशा मौजूद रहने वाले रूह के ये सभी अजसाम फानी कहे गए हैं, लिहाजा भरत के खानदान वाले अर्जुन तू जंग कर, रूह ही नौशाब है, रूह ही लाफानी है जो तीनों तसलसुले जमाना में फना नहीं होती। रूह ही हक है, जिस्म फानी है, यही बातिल है जिसका तीनों तसलसुले जमाना में वजूद नहीं है। जिस्म फानी है लिहाजा तू जंग कर, इस हुक्म से यह जाहिर नहीं होता कि अर्जुन सिर्फ कौरवों को मारे, पांडवों के तरफदारों में भी तो अजसाम ही खड़े थे। क्या पांडवों के अजसाम लाफानी थे? अगर जिस्म फानी है तो श्री कृष्ण किसकी हिफाजत में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई जिस्म वाला था? जिस्म तो बातिल है जिसका वजूद नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण इस जिस्म की हिफाजत में खड़े हैं? अगर ऐसा है तो वो भी नासमझ और जाहिल हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो सिर्फ जिस्म के लिए खाना पकाता है, मेहनत करता है, वो नासमझ और जाहिल है। वो ता उम्र गुनाह करने वाला इंसान बेकार ही जीता है। आखिरकार अर्जुन कौन था? दर हकीकत इश्क ही अर्जुन है। आशिक के लिए माबूद हमेशा रतबान बनकर साथ में रहते हैं, मुहिब की तरह उसकी रहनुमाई करते हैं। आप जिस्म नहीं हैं, जिस्म तो लिबास है, रहने का मकान है। इसमें रहने वाला उन्सियत से भरी हुई रूह है। मादी जंग में मारने काटने से अजसाम का खातिमा नहीं होता। ये जिस्म छूटेगा तो रूह दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। इसी के मुतालिक श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस तरह बचपन से जवानी या जयीफी आती है, उसी तरह जिस्म का बदलाव भी हासिल होता है। जिस्म को काटेंगे तो जी रूह नया लिबास बदल लेगी। जिस्म अपने तासुरात पर मुनहसिर है और तासुर की बुनियाद मन है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का पूरी तरह काबू में होना, अटल साबित कदम होना और आखिरी तासुर की तहलील एक ही बात है। तासुरात की बुनियाद का टूट जाना ही अजसाम का खात्मा है। इसे तोड़ने के लिए आपको इबादत करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने अमल या बेगरज अमली जोग का नाम दिया है। श्री कृष्ण ने जगह जगह पर अर्जुन को जंग की तरगीब दी, लेकिन एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मादी जंग या मार काट की हिमायत करता हो। ये जंग हमजाद और गैर नस्ली खसायल की है, दिल की दुनिया में है।
एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
जो इस रूह को मारने वाला मानता है और इस रूह को मरी हुई समझता है, वो दोनों ही रूह की हकीकत को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये रूह ना तो मरती है और ना ही मारी जाती है। फिर इसी हकीकत पर जोर देते हैं,
न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
ये रूह किसी दौर में ना तो पैदा होती है और ना फना होती है, क्योंकि ये वक्त लिबास ही तो बदलती है। ये रूह होकर और दूसरा कुछ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये अबदी है, हमेशा रहने वाली है, दायमी और कदीमी है। जिस्म के खत्म होने पर भी इसका खात्मा नहीं होता। रूह ही हक है, रूह ही कदीमी है, रूह ही दायमी और अबदी है। आप कौन हैं? अबदी दीन के मुकल्लिद। अबदी कौन है? रूह। आप रूह के पैरो हैं। रूह, रूह मुतलक और खुदा एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। आप कौन हैं? दायमी दीन के परस्तार। दायमी कौन है? रूह। यानी हम और आप रूह के परस्तार हैं। अगर आप रूहानी राह को नहीं जानते तो आपके पास दायमी और अबदी नाम की कोई चीज नहीं है, उसके लिए आप आहें भरते हैं। तो उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन अबदी दीन वाले नहीं हैं। अबदी दीन के नाम पर किसी बदरिवाज के शिकार हैं। अपने मुल्क में या गैर मुल्क में हर इंसान में रूह एक ही जैसी है। इस वास्ते सारी दुनिया में कहीं भी कोई रूह की हालत दिलाने वाला तरीका जानता है और उस पर चलने के लिए कोशिश में लगा है, तो वह दायमी दीन वाला है। चाहे अपने को वो ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों ना कह ले।
वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्।
खाकी जिस्म को रथ बनाकर जाते मुतलक की तमसील, मंजिले मकसूद पर बेजरर निशाना लगाने वाला प्रथा का पिसर अर्जुन। जो इंसान इस रूह को लाफानी, अबदी, दायमी और गैर मरई जानता है, वो इंसान कैसे किसी को हलाक करवाता है और कैसे किसी को हलाक करता है? लाफानी का फना होना गैर मुमकिन है। जो दायमी है वो जन नहीं लेता, लिहाजा जिस्म के लिए गम नहीं करना चाहिए। इसी को मिसाल देकर साफ करते हैं।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
जैसे इंसान जीर्णानी वासांसी, बोसीदा पुराने लिबासों को छोड़कर नए लिबासों को पहनता है, ठीक वैसे ही जी रूह पुराने अजसाम को तर्क कर दूसरे नए अजसाम में दाखिल होती है। जिस्म के बोसीदा होने पर ही نیا جسم قبول کرتا ہے تو بچے کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ لباس تو اور عمدہ ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ جسم اپنے تاثرات پر منحصر ہے۔ جب تاثرات بوسیدہ ہوتے ہیں تو جسم سے واسطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تاثر دو دن کا ہے تو دوسرے ہی دن جسم بوسیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد انسان ایک سانس بھی زیادہ نہیں زندہ رہتا۔ تاثر ہی جسم ہے۔ روح تاثرات کے مطابق نیا جسم قبول کر لیتی ہے۔ اتھا خلو کرتمیہ پورشہ یتھا ایہیو تتھیو پریتیہ بھوتی کرتم لوکم پروشو بھیجایتی۔ یعنی یہ انسان یقینی طور پر قرارداد ہے۔ اس دنیا میں انسان جیسا مستقل ارادے والا ہوتا ہے، ویسا ہی یہاں سے مر کر جانے پر ہوتا ہے۔ اپنے عزم سے بنائے ہوئے اجسام میں انسان جنم لیتا ہے۔ اس طرح موت محض جسم کا بدلاؤ ہے، روح نہیں مرتی ہے۔ پھر اس کی جاویدانی اور ابدیت پر زور دیتے ہیں۔
نینم چھندنتی شستران نینم دہتی پاوکہ نچینم کلیدینتیاپو نشوشیتی ماروتہ۔
ارجن، اس روح کو اسلحہ وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، آگ اسے جلا نہیں سکتی، پانی اسے نمناک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہوا اسے سکھا ہی سکتی ہے۔
اچھیدیو یمدائیو یم اکلیدیو شوشیو چا نتیہ سروگتہ ستھانو اچلو یم سناتن۔
یہ روح ناقابل تقسیم ہے، جس میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا، ناقابل آتش زنی ہے، اسے جلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ناقابل نمناک ہے، اسے گیلا نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان اسے اپنے میں جذب نہیں کر سکتا۔ یہ روح بلا شبہ ناقابل خشک، عالمگیر، اٹل، مستقل رہنے والی اور ابدی ہے۔ ارجن نے کہا تھا کہ خاندانی فرض دائمی ہے، ایسی جنگ کرنے سے دائمی دین مٹ جائے گا، لیکن شری کرشن نے اسے جہالت مانا اور روح کو ہی دائمی بتایا۔ آپ کون ہیں؟ دائمی دین کے پیرو۔ دائمی کون ہے؟ روح۔ اگر آپ روح تک کی دوری طے کرنے والے طریق خاص سے واقف نہیں ہیں تو آپ دائمی دین نہیں جانتے۔ اس کا برا نتیجہ فرقہ پرستی میں پھنسے مذہبی بزدل لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قرون وسطی بھارت میں غیر ملک سے آنے والے مسلمان محض 12,000 تھے، آج تقریباً 28 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ 12,000 سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ تقریباً 1 کروڑ ہو جاتے، اور کتنے ہو جاتے؟ یہ 28 کروڑ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب ہندو ہی تو ہیں، آپ کے سگے بھائی ہیں جو چھونے اور کھانے سے برباد ہو گئے۔ وہ برباد نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دائمی ناقابل تبدیل دین برباد ہو گیا۔ جب مادیاتی دائرے میں پیدا ہونے والی کوئی چیز اس ابدی کو چھو نہیں سکتی تو چھونے کھانے سے دائمی دین کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ یہ دین نہیں، ایک بری روایت کے حالات تھے، جس سے بھارت میں فرقہ پرستی پر منحصر دلوں کی دوری بڑھی، ملک کا بٹوارا ہوا، اور قومی اتحاد کا آج بھی مسئلہ سامنے کھڑا ہے۔ ان برے رواجوں کے واقعات تواریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ حمیرپور ضلع میں 50-60 اہل خاندانی چھتری راجپوت ٹھاکر تھے، آج وہ سب مسلمان ہیں۔ نہ ان پر توپ کا حملہ ہوا، نہ تلوار کا۔ ہوا کیا؟ نیم شب میں دو ایک مولوی اس گاؤں میں، جہاں محض ایک ہی کنواں تھا، کہ قریب چھپ کر بیٹھ گئے کہ مذہبی کام کو انجام دینے والا برہمن پروہت سب سے پہلے یہاں غسل کرنے آئے گا۔
जब वो आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया, उनके सामने उन्होंने पानी निकाला, मुंह लगाकर आबनोश किया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया, रोटी का एक टुकड़ा भी कुएं में डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, लाचार थे। उसके बाद पंडित जी को साथ लेकर वो चले गए, अपने घर में उन्हें कैद कर दिया। दूसरे दिन मौलवी साहेबान ने दस्त बस्ता पंडित जी से खाना खाने की गुजारिश की। पंडित जी नाराज होकर बोले, अरे तुम मुसलमान हो, मैं ब्राह्मण हूं, भला कैसे खा सकता हूं। उन्होंने कहा, महाराज हमें आप जैसे समझदार लोगों की सख्त जरूरत है, माफ करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव वापस आए, देखा लोग कुएं का इस्तेमाल पहले ही की तरह कर रहे थे। वो भूख हड़ताल करने लगे। लोगों ने वजह पूछी तो बोले, मुसलमान इस कुएं के चबूतरे पर चढ़ गए थे, मेरे सामने उन्होंने इस कुएं के पानी को झूठा किया और कुएं में रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग हैरान रह गए, पूछा अब क्या होगा। पंडित जी ने बताया, अब क्या, दीन तो बर्बाद हो गया। उस वक्त के लोग तालीम याफ्ता नहीं थे, औरतों और छोटी जात वालों से तालीम हासिल करने का हक न जाने कब से छीन लिया गया था। बनिया अपना धन दौलत पैदा करना ही अपना फर्ज मान बैठे थे। छतरी हजरात खसीदा ख्वान लोगों की खसीदा ख्वानी में खोए थे कि राजिक की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। इज्जत वैसे ही हासिल है तो पढ़े क्यों, दीन से उन्हें क्या लेना देना। दीन सिर्फ ब्राह्मणों की चीज बनकर रह गया था। वो ही दीनी शरीयतों के मुसन्निफ, वो ही उसके शरह नवीस और वो ही इसके हक व बातिल के फैसला कुन थे। जबकि जमाने कदीम में औरतों, छोटी जातों, बनियों, छत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का हक हासिल था। हर एक तबके के आरिफों ने वेद से मुताल्लिक जुमलों, मंत्रों की तसनीफ की है, दीनी मुनाजिरे के फैसलों में हिस्सा लिया है। जमाने कदीम के शाहों ने दीन के नाम पर रियाकारी फैलाने वालों को सजा दी, दीनदारों का एहतराम किया था। लेकिन कुरूने वस्ता अरसे दराज से भारत में दायमी दीन का हकीकी इल्म ना होने से मस्कूरा बाला गांव में रहने वाले भेड़ों की तरह एक तरफ दुबकते गए, दीन बर्बाद हो गया। कई लोगों ने इस गैर पसंदीदा अल्फाज को सुनकर खुदकुशी कर ली, लेकिन सब कहां तक जान गंवा देते। मुसलसल अकीदे के बावजूद भी लाचार होकर दूसरा हल ढूंढना पड़ा। आज भी वो बांस गाड़कर मूसल रखकर हिंदुओं की तरह शादी करते हैं, बाद में एक मौलवी निकाह पढ़ाकर चला जाता है। सब के सब हिंदू खालिस थे, सब के सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था, आब नोश किया था, ना वाकिफी में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, लिहाजा दीन बर्बाद हुआ। दीन तो हो गया छुई मुई, ये छुई मुई लाजवंती एक पौधा होता है, आप छू दे तो उसकी पत्तियां सिमट जाती हैं और हाथ हटाते ही खिल उठती हैं। यह पौधा हाथ हटाने पर पहले की हालत में हो जाता है, लेकिन दीन ऐसा कुमलाया कि आगे कभी शगुफ्ता नहीं होगा। ये मर गए हमेशा के लिए, इनके राम कृष्ण और भगवान मर गए, जो दायमी थे वो मर गए। दर हकीकत वो दायमी के नाम पर कोई बदरविश थी जिसे लोग दीन मान बैठे थे। दीन की पनाह में हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हम फानी हैं और दीन कोई ठोस चीज है जिसकी पनाह में जाकर हम भी लाफानी हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और ये दीन सिर्फ छूने और खाने से मर जाएगा, तो दीन हमारी क्या हिफाजत करेगा। दीन तो आपकी हिफाजत करता है, आपसे ताकतवर है। आप तलवार से मरेंगे और दीन वो छूने से खत्म हो गया है। कैसा है आपका दीन, बुरे रिवाज खत्म होते हैं ना कि अबदी। अबदी तो ऐसी ठोस चीज है जिसे असलिहा नहीं काटते, आग जला नहीं सकती, पानी इसे नमनाक नहीं कर सकता है। खाना पीना तो दूर, दुनिया में पैदा होने वाली कोई भी चीज इसे छू भी नहीं सकती, तो वो अबदी दीन खत्म कैसे हो गया? ऐसे ही कुछ बदरिवाज अर्जुन के वक्त में भी थे। अर्जुन भी इनका शिकार था। उसने आहुजारी करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि खानदानी फर्ज अबदी है, जंग से अबदी दीन बर्बाद हो जाएगा। खानदानी फर्ज खत्म होने से हम हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुझमें यह ला इल्मी कहां से पैदा हो गई? इससे साबित है कि वो कोई बदरिवाज था। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका हल पेश किया और बताया कि रूह ही अबदी है। अगर आप रूहानी राह को नहीं जानते तो अबदी दीन में आपका अभी तक दाखिला नहीं हुआ। जब ये अबदी, दायमी रूह सबके अंदर मौजूद है तो तलाश किसकी की जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
ये रूह गैर मरई यानी हवास का मौजू नहीं है। हवास के जरिए इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक हवास और मौजूआत का ताल्लुक है तब तक रूह तो है, लेकिन उसे समझा नहीं जा सकता। वो बईद अल कयास है। जब तक कल्ब और कल्ब की लहर है तब तक वो दायमी है। तो लेकिन हमारे दीदार इस्तेमाल और दाखिले के लिए नहीं है। लिहाजा मन पर काबू करें। पहले श्री कृष्ण बताए हैं कि बातिल का वजूद नहीं है और हक की तीनों दौर में कमी नहीं है। वो हक है रूह। रूह ही ना काबिले तब्दील, दायमी, अबदी और गैर मरई है। मुबस्सिरीन ने रूह को इन खास सिफात से मुजयन देखा, न 10 जमानों के जानने वालों ने देखा, न किसी दौलतमंद ने देखा, बल्कि मुबस्सिरीन ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि उनसुर है खुदा। मन पर काबू रखने के वक्त में रियाजती इसका दीदार और उसमें दाखिला पाता है। वक्ते हुसूल में माबूद मिलते हैं और दूसरे ही पल वो अपनी रूह को खुदाई सिफात से आरास्ता पाता है। वो देखता है कि रूह ही हक, अबदी और मुकम्मल है। ये रूह बईदुल कियास है। ये बेऐब नाकाबिले तब्दील कही जाती है। लिहाजा अर्जुन, रूह को ऐसा समझकर तू गम करने के लायक नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के ख्यालात में तजाद दिखाते हैं जो आम दलील है।
अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
अगर तू इसे हमेशा जन्म लेने वाली और हमेशा मरने वाली समझे तब भी तुझे गमजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
जातस्य हि ध्रुवो मृत ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
ऐसा समझ लेने पर भी जन्म लेने वाले की यकीनी मौत और मरने वाले की यकीनी पैदाइश साबित होती है। इस वजह से भी तरकीब से खाली तू इस मामले में गम करने के काबिल नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं उसके लिए गमजदा होना एक दूसरी तकलीफ को दावत देना है।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।
अर्जुन, सभी जानदार पैदा होने से पहले बिला जिस्म वाले और मरने के बाद भी बिला जिस्म वाले हैं, पैदाइश के पहले और बाद भी दिखाई नहीं पड़ते। सिर्फ पैदाइश और मौत के दरमियान में ही जिस्म हासिल किए हुए दिखाई देते हैं, लिहाजा इस तब्दीली के लिए बेकार की फिक्र क्यों करता है? इस रूह को देखता कौन है? इस पर इरशाद फरमाते हैं,
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस रूह को मुबस्सरीन ने देखा है, अब उनसुर बीनी की कामयाबी पर रोशनी डालते हैं कि कोई नादिर अजीब इंसान ही इस रूह को ताज्जुब की नजर से देखता है, सुनता नहीं, जाहिर तौर पर देखता है, और ठीक उसी तरह दूसरा कोई अजीम इंसान ही हैरत अंगेज की तरह उसके उनसुर का बयान करता है। जिसने देखा है वही उसकी हकीकत का बयान कर सकता है। दूसरा कोई नादिर रियाजत कश से बतौर हैरत सुनता है, सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अहल के लिए ही है। अय अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी हकीकत को नहीं जान पाते, क्योंकि वसीला पूरा नहीं होता। आप लाख इल्म की बातें सुने, समझें, बाल की खाल निकाल कर समझें, ख्वाहिशमंद भी रहें, लेकिन फिरेफ्तगी में बहुत बड़ी ताकत है। थोड़ी देर बाद भी आप अपने दुनियावी इंतजामात में मशगूल मिलेंगे। आखिर में श्री कृष्ण फैसला देते हैं,
देही नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितुमर्हसि।
अर्जुन, ये रूह सबके जिस्म में हमेशा नाकाबिले हलाक है, नाकाबिले तराश है, लिहाजा सभी जानदारों के लिए तू गमजदा होने के काबिल नहीं है। रूह ही अबदी है, इस हकीकत की तामील करके, इसकी अजमतों के साथ बयान करके ये सवाल यहीं पूरा हो जाता है। अब सवाल खड़ा होता है, इसका हुसूल कैसे हो? पूरी गीता में इसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता बेगरज अमली योग, निष्काम कर्मयोग, और दूसरा इल्मी योग, ज्ञान योग। दोनों ही राहों में किया जाने वाला अमल एक ही है। वो अमल कितना जरूरी है, इसकी अहमियत पर जोर देते हुए योग के मालिक श्री कृष्ण इसी इल्मी योग के मुतालिक बयान करते हैं,
स्वधर्मम पिचावेक्ष नविकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
अर्जुन, फर्ज मनसबी के मद्देनजर भी तू खौफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि फर्ज से मुजयन जंग से बढ़कर दूसरा कोई आला इफादी रास्ता क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो रूह दायमी है, रूह अबदी है, वही वाहिद दीन है, ऐसा कहा गया है। अब ये फर्ज मनसबी क्या? दीन तो वाहिद रूह ही है, वो तो अटल कायम है, तो फर्ज गुजारी क्या? लेकिन इस राह रूहानियत में लगने की सलाहियत हर इंसान की अलग अलग होती है। खसलत से पैदा इस सलाहियत को फर्ज मनसबी कहा गया है,
इसी एक बरहक रूहानी राह पर चलने वाले रियाजत कशों को अजीम इंसान ने फितरी तौर पर इनकी सलाहियत के मुताबिक चार दर्जात में तकसीम किया, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। रियाजत के इब्तदाई दौर में हर एक रियाजती शूद्र यानी कम इल्म वाला होता है। घंटों याद इलाही में बैठने पर वो 10 मिनट भी अपने मकसद के मुताबिक नहीं हो पाता, वो कुदरती लौ से दुनिया से जुदा नहीं हो पाता। इस हालत में अजीम इंसान की खिदमत से उसकी फितरत में नेक सिफात आ जाती हैं, वो वैश्य दर्जे का सालिक बन जाता है। रूहानी दौलत ही मुस्तकिल दौलत है। धीरे धीरे वो इस दौलत को इकट्ठा करता हुआ और हवास की हिफाजत करने की सलाहियत वाला हो जाता है। ख्वाहिश, गुस्सा वगैरह से हवास का तशद्दुद होता है और इरफान व बैराग से उनकी हिफाजत होती है, लेकिन कुदरत को खत्म करने की हैसियत उसमें नहीं होती। रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते रियाजती के बातिन में तीनों सिफात को खत्म करने की कुव्वत यानी छत्रीपन आ जाता है। इस सतह पर कुदरत और उसके उयूब को खत्म करने की सलाहियत आ जाती है। लिहाजा यह जंग यहीं से शुरू होती है, बस सिलसिले वसीला करके रियाजती ब्राह्मण वाली सलाहियत के दर्जे में बदल जाता है। इस वक्त मन पर काबू, नफ्स खुशी, मुसलसल गौर व फिक्र, सीधापन, तजुर्बे इल्म वगैरह निशानात रियाजत कश में अपने आप जारी होते हैं। इन्हीं के इरादे के मुताबिक चलकर सिलसिलावार वो माबूद में खुद को जम कर लेता है, जहां वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। जिस्म की परवाह ना करने वाले शाह जनक के दरबार में वली याज्ञवल्क ने चाक्रायन, उशस्ती, कहोल, आरुणी, उद्दालक और गार्गी के सवालात को हल करते हुए फरमाया कि खुद शनासी की पूरी तरह से तामील करने वाला ही ब्राह्मण होता है। ये रूह ही आलम वो आलम बाला और तमाम जानकारों को अंदर से मुनज्जम करती है। सूरज, चांद, जमीन, पानी, हवा, आग, तारे, कला, आसमान और हर एक लम्हा इस रूह की ही जेर हुकूमत है। ये रूह आलिमुल गैब नौशाब है, रूह लाफानी है, इससे जुदा सब कुछ फानी है। जो इंसान इसी आलम में इस लाफानी की हकीकत को ना समझकर हवन करता है, रियाजत करता है, हजारों साल तक यज्ञ करता है, उसके सारे आमाल फानी हैं। जो भी इस लाफानी के जाने बगैर इस दुनिया से फना होकर जाता है वो काबिल रहम है, तंग दिल है, और जो इस लाफानी को जानकर और समझकर इस दुनिया से फना होकर जाता है वो ब्राह्मण है। अर्जुन क्षत्रिय दर्जे का रियाजत कश है। श्री कृष्ण फरमाते हैं कि क्षत्रिय दर्जे के रियाजत कश के लिए जंग के अलावा कोई इफादी रास्ता है ही नहीं। सवाल उठता है कि क्षत्रिय है क्या। आमतौर से लोग इसका मतलब समाज में जन्म से पैदा हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातों से लेते हैं। इन्हें ही चार नस्ल वर्ण मान लिया जाता है, लेकिन नहीं। शरीयत के मुसन्निफ ने खुद बताया है कि क्षत्रिय क्या है, नस्ल क्या है। यहां उन्होंने सिर्फ क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें बाब तक इस सवाल का हल पेश किया कि दर हकीकत ये नस्लें हैं क्या और कैसे इनमें तब्दीली होती है। श्री कृष्ण ने फरमाया चातुर्वर्ण्यन मया सृष्टम। चार दर्जात नस्लों की तकलीफ मैंने की तो क्या इंसानों को बांटा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं। गुणकर्म विभागश, खूबियों के वसीले से अमल को चार हिस्सों में बांटा। यह देखना है कि वो अमल क्या है जिसे तकसीम किया गया। ये खूबियां काबिले रद्दोबदल हैं। रियाजत के माकूल तरीके के जरिए मलकात मजमूमी से मलकात रद्दिया और मलकात रद्दिया से मलकात फाजिला में दाखिला मिलता जाता है। आखिरकार मिजाज ब्राह्मण बन जाता है। उस वक्त माबूद में दाखिला दिला देने वाली सारी सलाहियतें اس ریاضت کش میں موجود رہتی ہیں۔ نسل سے وابستہ سوال یہاں سے شروع ہو کر 18ویں باب میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ شری کرشن کا ماننا ہے، شریان سودھرمو وگنا پردھرما سونشتتات، قدرت سے پیدا اس دین میں لگنے کی صلاحیت جس سطح کی ہو، بھلے ہی وہ بنا کسی خاصیت والی شودر درجے کی ہو، تب بھی وہ بے حد فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ آپ سلسلے وار وہیں سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے اوپر والوں کی نقل کر کے ریاضت کش برباد ہو جاتا ہے۔ ارجن شتریہ درجے کا ریاضتی تھا، لہذا شری کرشن کہتے ہیں کہ ارجن، اپنی فطرت سے پیدا ہونے والی اس جنگ میں لگنے کی اپنی طاقت کو دیکھ کر بھی تو خوف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی افادی کام چھتریے کے واسطے نہیں ہے۔ اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے جوگ کے مالک پھر ارشاد فرماتے ہیں،
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
खाकी जिस्म को ही रथ बनाकर बेखता निशानेबाज अर्जुन खुद ब खुद हासिल جنت کے کھلے ہوئے دروازے والی اس جنگ کا موقع خوش قسمت شتری ہی حاصل کرتے ہیں۔ شتری درجے کے ریاضتی میں تینوں صفات کو کاٹ دینے کی صلاحیت رہتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اس میں روحانی دولت پوری طور سے موجود رہتی ہے۔ صوت سور میں سفر کرنے کی اس میں صلاحیت رہتی ہے، یہی کھلا ہوا جنت کا دروازہ ہے۔ میدان اور عالم میدان کی اس جنگ کو خوش قسمت چھتریے ہی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ہی اس طرح کی ٹکر لینے کی طاقت موجود ہے۔ دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پوری دنیا سمٹ کر لڑتی ہے، ہر ایک قوم لڑتی ہے، لیکن دائمی فتح حاصل کرنے والے کو بھی نہیں ملتی۔ یہ تو انتقام ہے، جو جس کو جتنا دباتا ہے امتداد زمانہ میں اسے بھی اتنا ہی دبنا پڑتا ہے۔ یہ کیسی فتح ہے جس میں حواس کو سکھانے والا غم بنا ہی رہتا ہے، آخر میں جسم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقی جنگ تو میدان اور عالم میدان کی ہے، جس میں ایک بار کامیابی مل جانے پر قدرت پر ہمیشہ کے لیے بندش اور اعلی انسان روح مطلق کا حصول ہو جاتا ہے۔ یہ
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
अगर तू इस दीन से मुजयन जंग यानी दायमी अबदी आला दीन रूह मुतलक में داخلہ دلانے والا جہاد نہیں کرے گا، تو فرضی منصبی یعنی فطرت سے پیدا ہونے والی اس جنگ کی قوت عمل پیرا ہونے کی صلاحیت کھو کر گناہ یعنی آمد و رفت اور رسوائی کو حاصل کرے گا۔ رسوائی پر روشنی ڈالتے ہیں،
اکیرتیم چاپی بھوتانی کتھیشنتی تے ویام संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते।
तमाम लोग बहुत दिनों तक तेरी रुसवाई का जिक्र करेंगे। आज भी माजूल होने वाले आबिदों में विश्वामित्र, पराशर, नीमी, श्रृंगी वगैरह का शुमार होता है۔ بہت سے ریاضتی اپنے فرض پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ ایسا خیال بھی ریاضت میں مددگار ہوتا ہے، اس سے ریاضت میں لگے رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ कुछ हद तक ख्याल भी साथ देता है। काबिले एहतराम इंसानों के लिए रुस्वाई मौत से भी बढ़कर होती है।
भयाद्रणादुपरतम् मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
जिन अजीम सिपे सालारों की निगाह में तेरी बहुत ज्यादा कद्र मंजिलत थी, अब उनकी नजर में तू गिर जाएगा। वो अजीम सिपे सालार तुझे खौफ की वजह से जंग से भाग खड़ा हुआ मानेंगे। अजीम सिपे सालार कौन? इस राह पर बेहद मेहनत से आगे बढ़ने वाले रियाजती अजीम सिपे सालार हैं। इसी तरह इतनी ही मेहनत से ला इल्मी की तरफ खींचने वाले ख्वाहिश, गुस्सा, लालच, फिरेफ्तगी वगैरह भी अजीम सिपे सालार हैं, जो तुझे बहुत इज्जत देते थे कि रियाजती काबिले तारीफ है, तू उनकी नजर से गिर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि
अवाच्य वादांश्च बहु वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् नु किम्।
दुश्मन लोग तेरी बहादुरी की बुराई करते हुए बहुत सी नाकाबिले जिक्र बातों को कहेंगे। एक बुराई आती है तो चारों तरफ से मजम्मत और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। नाकाबिले जिक्र बातें ही कहना शुरू कर देते हैं, इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी। लिहाजा
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय।
इस जंग में तू मरेगा तो जन्नत हासिल करेगा, सौत में सफर करने की सलाहियत रहेगी, सांस के बाहर कुदरत में सफर करने का बहाव रुक जाएगा, आला तरीन माबूद में दाखिला दिलाने वाली रूहानी दौलत दिल में पूरी तरह रवा रहेगी, या इस जंग में कामयाबी मिलने पर मकाम आला के मर्तबे को हासिल करेगा। लिहाजा अर्जुन, जिहाद के लिए मजबूत इरादा करके खड़ा हो जा। आमतौर से लोग इस श्लोक का मतलब लगाते हैं कि इस जंग में मरोगे तो जन्नत हासिल करोगे और कामयाबी मिलेगी तो दुनियावी ऐशो इशरत का लुत्फ उठाओगे, लेकिन आपको याद होगा अर्जुन कह चुका है, बंदा परवर, दुनियावी ऐशो इशरत ही नहीं बल्कि तीनों अवालिम की हुकूमत और देवताओं का मालिकाना यानी इंद्र का ओहदा हासिल होने पर भी मुझे वो तरकीब नजर नहीं आती जो मेरे हवास को सुखाने वाले गम को दूर कर सके। अगर इतना ही हासिल होना है तो गोविंद, मैं जंग हरगिज नहीं करूंगा। अगर इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जंग कर फतेह हासिल करेगा, तू जमीन का इख्तदार हासिल करेगा, शिकस्त मिलेगी तो रहने के लिए जन्नत नसीब होगी, तो श्री कृष्ण देते ही क्या हैं? अर्जुन इससे आगे की हकीकत शर्फ की ख्वाहिश वाला शागिर्द था, जिससे मुर्शिदे कामिल श्री कृष्ण ने फरमाया के मैदान और आलिम मैदान की इस टक्कर में अगर जिस्म का वक्त पूरा हो जाता है और मंजिल तक नहीं पहुंच सका तो जन्नत हासिल करेगा, यानी सौत में ही सफर करने की सलाहियत हासिल कर लेगा, रूहानी दौलत दिल में ढल जाएगी और इस जिस्म के रहते रहते तू जंग में कामयाब हो जाता है तो हुजूर आला सबसे आला माबूद के मर्तबे का शर्फ हासिल करेगा, हुजूर आला का मकाम हासिल करेगा, फतेह हासिल करेगा तो सब कुछ क्योंकि आला फजीलत को हासिल करेगा, और हारेगा तो देवता की हैसियत, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। फायदे में भी फायदा ही है और नुकसान में भी फायदा ही है, फिर इस पर जोर देते हैं।
दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।
इस तरह आराम और तकलीफ, नफा और नुकसान, कामयाबी और नाकामयाबी को बराबर समझकर तू जंग के लिए तैयार हो जा। जंग करने से तो गुनाहगार नहीं होगा, यानी आराम में सब कुछ और तकलीफ में भी देवता का मर्तबा है, फायदे में हुजूर आला की हालत यानी सब कुछ और नुकसान में देवता का मर्तबा है, फतेह में हुजूर आला का मकाम और शिकस्त में भी रूहानी दौलत पर इख्तियार हासिल है। इस तरह अपने नफा और नुकसान को अच्छी तरह खुद समझकर तू जंग के लिए तैयार हो जा। जंग में ही दोनों चीजें हैं, जंग करेगा तो गुनाह यानी आमदो रफ्त को हासिल नहीं करेगा, लिहाजा तू जंग के लिए तैयार हो जा।
एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि।
पार्थ, ये अक्ल की बातें तेरे लिए इल्मी जोग के मारिफत कही गई हैं। कौन सी अकल? यही कि जंग कर। इल्मी जोग में इतना ही है कि अपनी हैसियत को देखकर नफा और नुकसान का अच्छी तरह ख्याल करके फतेह हासिल करेंगे तो हुजूर आला का मकाम और हारेंगे तो देवता का मर्तबा, फतेह में सब कुछ और शिकस्त में भी देवता का मर्तबा, दोनों तरह फायदा है। जंग नहीं करेंगे तो सभी हमें खौफ की वजह से जंग से भागने वाला मानेंगे, रुसवाई होगी। इस तरह अपने वजूद को सामने रखकर खुद गौर तलब होकर जंग में आगे बढ़ना ही इल्मी जोग है। आम तौर से लोगों में यह गलत फहमी है कि इल्म की राह में अमल, जंग नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि राह इल्म में अमल नहीं है। मैं तो खालिस हूं, अकलमंद हूं, बाहोश हूं, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, सिफात ही सिफात में बर्ताव करती हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। जोग के मालिक श्री कृष्ण के मुताबिक ये इल्मी जोग नहीं है। इल्मी जोग में भी वही अमल करना है जो बेगरज अमली जोग में किया जाता है। दोनों में सिर्फ फहम व नजर का फर्क है। इल्म की राह वाला अपनी हैसियत समझकर खुद पर मुनहसिर होकर अमल करता है, जबकि बेगरज अमल का जोगी इलाह पर मुनहसिर होकर अमल करता है। अमल करना दोनों राहों में है और वो अमल भी एक ही है जिसे दोनों राहों में किया जाता है। सिर्फ अमल करने के नजरियात दो हैं। अर्जुन, इसी अकल को अब तू बेगरज अमली जोग के मुतालिक सुन, जिससे मुजयन होकर दुनियावी आमाल की बंदिश का अच्छी तरह खात्मा करेगा। यहां श्री कृष्ण ने अमल का नाम पहली मर्तबा लिया, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया कि अमल है क्या। अब अमल के बारे में ना बताकर पहले अमल की सिफात पर रोशनी डालते हैं।
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
इस बेगरज अमली जोग में इब्तिदा का यानी तुख्म का खात्मा नहीं होता, वक्ती फायदे वाली बुराई नहीं है, लिहाजा इस बेगरज अमल की, इस अमल के जरिए की गई दीन की थोड़ी भी मश्क जन्म और मौत की शक्ल वाले बहुत बड़े खौफ से आजाद कर देती है। आप इस अमल को समझें और इस पर दो कदम चल भर दें,
जो घर बार के काम काज वाली हालत में रहकर भी चला जा सकता है। रियाजत कश तो चलते ही हैं, तुख्म भर डाल दें तो अर्जुन, तुख्म का खात्मा नहीं होता। कुदरत में कोई ऐसी ताकत नहीं है, ऐसा कोई असलिहा नहीं जो इस हकीकत के वजूद को मिटा दे। कुदरत महज पर्दा डाल सकती है, कुछ वक्त के लिए रुकावट डाल सकती है, लेकिन वसीले की शुरुआत को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सारे गुनाहगारों से भी बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो, इल्म की कश्ती के जरिए बेशक किनारा पा जाएगा। ठीक उसी बात को यहां कहते हैं कि अर्जुन, बेगरज अमली जोक की तुख्म रेजी भर कर दें तो उस तुख्म का कभी खात्मा नहीं होता, बरखिलाफ नतीजे वाला ऐब भी उसमें नहीं होता। क्या आपको जन्नत, धन दौलत या कामयाबियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप ये वसीला भले ही छोड़ दें, लेकिन यह वसीला आपको नजात दिलाकर ही छोड़ेगा। इस बेगरज अमली जोक का थोड़ा सा भी वसीला पैदाइश और मौत के बहुत बड़े खौफ से आजाद कर देता है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अमल की यह तुख्मरेजी मुख्तलिफ पैदाइशों के बाद वहीं खड़ा कर देगी जहां आला मकाम है, आला नजात है। इसी तसलसल में आगे इरशाद फरमाते हैं,
व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना।
अर्जुन, इस बेगरज अमली जोग में मुतहर्रिक अकल एक ही है, तरीका एक ही है और नतीजा एक ही है। रूहानी दौलत ही हमेशा कायम रहने वाली दौलत है। इसी दौलत को कुदरती वबाल में रफ्ता रफ्ता हासिल करना रोजगार है। ये रोजगार गैर मुश्तबा तरीका भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत से तरीके बताते हैं, क्या वो याद इलाही नहीं करते? श्री कृष्ण फरमाते हैं, हां वो याद इलाही नहीं करते। उन इंसानों की अक्ल बेशुमार शाखों वाली होती है, इस वास्ते बेशुमार तरीकों का फैलाव कर लेते हैं।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति।
पार्थ, कामात्मान, ख्वाहिशात से मुजयन, वेदवादरता, वेद के जुमलों में डूबे हुए, स्वर्ग परा, जन्नत को ही मंजिल मकसूद मानते हैं कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले नासमझ लोग जन्म और मौत की शक्ल में समरा देने वाली ऐशो इशरत और शान शौकत को हासिल करने के लिए तमाम आमाल का फैलाव कर लेते हैं, दिखावटी खूबसूरत अल्फाज में उसका इजहार भी करते हैं। यानी नासमझ लोगों की अक्ल बेशुमार किस्मों वाली होती है, वो समरे वाले जुमलों में ही डूबे रहते हैं, वेद के जुमलों को ही सबूत मानते हैं, जन्नत को ही अफजल मानते हैं। उनकी समझ बहुत सी किस्मों वाली होती है, लिहाजा बेशुमार तरीकों का ईजाद कर लेते हैं। वो नाम तो उनसुरे आला माबूद का ही लेते हैं, लेकिन उसके पर्दे में बेशुमार तरीकों का फैलाव कर लेते हैं। तो क्या ये बेशुमार तरीके अमल नहीं है? श्री कृष्ण फरमाते हैं, नहीं, बेशुमार तरीके अमल नहीं है, तो एक मुकर्ररा तरीका है क्या? श्री कृष्ण अभी इसका खुलासा नहीं करते। अभी तो सिर्फ इतना कहते हैं कि ना समझ लोगों की अकल लामहदूद शाखों वाली होती है, लिहाजा वो बेशुमार तरीकों का फैलाव कर लेते हैं। ये सिर्फ फैलाव ही नहीं करते बल्कि मुरस्सा अंदाज में उसका बयान भी करते हैं। उसका असर क्या होता है?
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते।
उनके अल्फाज का असर जिन जिन लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ जाता है अर्जुन, उनकी भी अक्ल गुम हो जाती है, ना कि वो कुछ हासिल करते हैं। उन अल्फाज के जरिए ठगे हुए दिलो दिमाग वालों और दुनियावी आयशो इशरत में डूबे हुए इंसानों के बातिन में अमली अकल नहीं रह जाती। इलाह में मरकूज करने वाला गैर मुश्तबा तरीका उनमें नहीं होता। ऐसे ना समझ लोगों की बातें सुनता कौन है? आयशो इशरत में डूबे हुए लोग ही सुनते हैं, अहल इंसान नहीं सुनता। ऐसे इंसानों में मुसावी और अबदी उनसुर में दाखिला दिलाने वाली गैर मुश्तबा तरीके से मुजयन अकल नहीं होती। सवाल उठता है कि वेद वादरताह, जो वेद के जुमलों में डूबे हुए हैं, क्या वो भी गलती करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
अर्जुन, त्रैगुण्य विषय वेदा, वेद तीनों सिफात तक रोशनी डालते हैं, इससे आगे की हकीकत वो नहीं जानते, लिहाजा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, तू तीनों सिफात से ऊपर उठ, यानी वेदों के अमली हलके से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद्व, आराम और तकलीफ के वबालों से दूर, हमेशा सच्चाई की राह पर कायम, अपने भले बुरे की ख्वाहिश ना रखते हुए खुद साज बन। इस तरह ऊपर सवाल उठता है कि सिर्फ हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण बताते हैं, वेदों से ऊपर जो भी उठता है और जो परवरदिगार को जानता है वो ब्राह्मण है, यानी खुसूसी इल्म वाला है।
यावानर्थ उदपानी सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
हर तरफ से लबरेज तालाब को हासिल करने के बाद इंसान का छोटे तालाब से जितना मतलब रहता है, अच्छी तरह माबूद को जानने वाले ब्राह्मण को वेदों से उतना ही ताल्लुक होता है। मतलब ये कि जो वेदों से ऊपर उठता है वो माबूद यानी ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। यानी तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह नस्ली खसाइल की कुव्वतों के नाम हैं। उनका ताल्लुक अमल से है, ना कि जन्म से मुकर्रर होने वाली कोई कदामत। जिसे गंगा की धारा हासिल है उसे नाचीज तालाब से क्या मतलब? कोई उसमें आबे दस्त लेता है तो कोई जानवरों को गुस्ल करा देता है, इसके आगे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इस तरह माबूद को मुजस्सम जानने वाले उस ब्राह्मण अजीम इंसान का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही ताल्लुक रह जाता है। ताल्लुक रहता जरूर है, वेद रहते हैं क्योंकि ताबईन के लिए उनका इस्तेमाल है, वहीं से तबसरा शुरू होगा। उसके बाद जोग के मालिक श्री कृष्ण अमल करते वक्त बरती जाने वाली एहतियात की इजरा करते हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि।
अमल करने में ही तेरा इख्तियार हो, समराह में कभी नहीं। ऐसा समझ के समराह है ही नहीं, समरेह का ख्वाहिशमंद भी ना हो और अमल करने में तू अकीदत से मुबर्रा भी ना हो। अब तक जोग के मालिक श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार अमल का नाम लिया, मगर यह नहीं बताया कि वो अमल है क्या और उसे करें कैसे। उस अमल की सिफात पर रोशनी डाली के एक, अर्जुन इस अमल के जरिए तू आमाल की बंदिश से अच्छी तरह आजाद हो जाएगा। दो, अर्जुन इसमें शुरुआत का यानी तुख्म का खात्मा नहीं है। शुरुआत कर भर दें तो कुदरत के पास ऐसी कोई तरकीब नहीं कि इसे खत्म कर दे। तीन, अर्जुन इसमें महदूद समरे वाला ऐब भी नहीं है कि जन्नत हुसूल माल जर कामयाबियों में फंसा कर खड़ा कर दे। चार, अर्जुन इस अमल की मुख्तसर रियाजत भी जन मौत के खौफ से निजात दिलाने वाली होती है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि वो अमल है क्या, किया कैसे जाए। इसी बाब के 41वें श्लोक में उन्होंने फरमाया, पांच, अर्जुन इसमें गैर मुश्तबा अक्ल एक ही है, अमल एक ही है, तो क्या बहुत से अमाल वाले याद नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अमल नहीं करते। उसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं कि ना समझो की अकल बेशुमार शाखों वाली होती है, लिहाजा वो बेशुमार अमली राहों का फैलाव कर लेते हैं। वो दिखावटी आरास्ता जबान में इन तरीकों का भी बयान करते हैं। उनकी तकरीर का असर जिनके दिलो दिमाग पर पड़ जाता है उनकी भी अक्ल गुम हो जाती है। लिहाजा गैर मुश्तबा तरीका एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो तरीका कौन सा है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन अमल करने में ही तेरा इख्तियार है, समराह में कभी नहीं। समरेह का ख्वाहिशमंद भी मत बन और अमल करने में तू अकीदत से मुबर्रा ही ना हो, यानी मुसलसल तौर से करने के लिए इसमें महू होकर करें, लेकिन यह नहीं बताया कि वो अमल है क्या। अमूमन इस श्लोक की नजीर देकर लोग कहते हैं, कुछ भी करो सिर्फ समरे की ख्वाहिश मत करो, हो गया बेगरज अमली जोग। लेकिन अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि अमल है कौन सा जिसे करें। यहां पर सिर्फ अमल के खसूसियात पर रोशनी डाली कि अमल अता क्या करता है और अमल को करते वक्त जहन में रखे जाने वाले एहतियात क्या हैं, उन पर रोशनी डाली। सवाल उसी तरह का बना हुआ है जिसे जोग के मालिक आगे बाब 3 और 4 में साफ करेंगे, फिर इसी पर जोर देते हैं।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
धनंजय, रगबत और सोहबत के असर को तर्क कर, कामयाबी और नाकामयाबी में मुसावी ख्याल रखकर जोग में साबित कदम होकर अमल कर। कौन सा अमल? बेगरज अमल कर। समत्वम योग उच्चते, ये मुसावी एहसास ही जोग कहलाता है। गैर मुसावात जिसमें ना हो ऐसा एहसास मुसावी कहलाता है। हुसूल जर और कामयाबियां गैर मुसावी बनाती हैं। रगबत हमें गैर मुसावी बनाती है। समरे की ख्वाहिश
غیر مساوات پیدا کرتی ہے، لہذا سمرے کی خواہش نہ ہو، پھر بھی عمل کرنے میں عقیدت سے مبرہ نہ ہو۔ دیکھی سنی سبھی چیزوں میں رغبت کو ترک کر کے حصول اور غیر حصول کے متعلق نہ سوچ کر صرف جوگ میں قائم رہتے ہوئے عمل کر، جوگ سے من متحرک نہ ہو۔ جوگ ایک انتہا کی حالت ہے اور ایک ابتدائی حالت بھی ہوتی ہے۔ ابتدا میں بھی ہماری نظر منزل مقصود پر ہی رہنی چاہیے، لہذا جوگ پر نگاہ رکھتے ہوئے عمل کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مساوی خیال یعنی کامیابی اور ناکامیابی میں مساوات کا خیال ہی جوگ کہلاتا ہے۔ جس کو کامیابی اور ناکامیابی متزلزل نہیں کر پاتی، غیر مساوات جس میں پیدا نہیں ہوتی، ایسا خیال ہونے کی وجہ سے یہ مساوی جوگ کہلاتا ہے، یہ معبود سے مساوات دلاتا ہے، لہذا اسے مساوی جوگ کہتے ہیں۔ خواہشات کا پوری طرح سے ایثار ہے، لہذا اسے بے غرض عملی جوگ کہتے ہیں۔ عمل کرنا ہے، اس واسطے اسے عملی جوگ کہتے ہیں۔ پروردگار سے میل کراتا ہے، لہذا اس کا نام جوگ یعنی میزان ہے۔ اس میں اقلیت کی سطح پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کامیابی اور ناکامیابی میں مساوات کا خیال رہے، رغبت نہ ہو، سمرے کی خواہش نہ آنے پائے، لہذا یہی بے غرض عملی جوگ عقلی جوگ بھی کہا جاتا ہے۔
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः।
धनंजय, अवरम कर्म हयासोज अमल, ख्वाहिशात से मुजयन अमल عقلی جوگ سے بہت دور ہے۔ سمرے کی خواہش رکھنے والے بخیل ہیں، وہ روح کے ساتھ رواداری نہیں کرتے، لہذا مساوات والے عقلی جوگ کا سہارا لے کر جیسی خواہش ہے ویسا بھی مل جائے تو اس کے تلذذ کے لیے جسم حاصل کرنا پڑے گا۔ جنم اور موت کا سلسلہ قائم ہے تو بھلائی کیسی؟ ریاضت کش کو تو نجات کی خواہش بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ خواہشات سے آزادی پالنا ہی تو نجات ہے۔ سمرے کے حصول کی فکر کرنے سے ریاضتی کا وقت بلا وجہ برباد ہو جاتا ہے، اور سمرہ حاصل ہونے پر وہ اسی سمرے میں الجھ جاتا ہے، اس کی ریاضت ختم ہو جاتی ہے، آگے وہ یاد رب کیوں کرے، وہاں سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا عقل مساوات سے جوگ کا برتاؤ کریں۔ راہ علم کو بھی شری کرشن نے عقلی جوگ کہا تھا کہ ارجن، یہ عقل تیرے لیے علمی جوگ کے متعلق کہی گئی، اور یہاں بے غرض عملی جوگ کو بھی عقلی جوگ کہا گیا۔ در حقیقت دونوں میں سمجھ کا اور نظریات کا ہی فرق ہے، اس میں نفع و نقصان کا حساب و کتاب رکھ کر اس کی تحقیق کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اس میں اقلیت کی سطح پر مساوات بنائے رکھنا پڑتا ہے، لہذا اسے عقل مساوات جوگ کہا جاتا ہے۔ اس واسطے دھننجے، تو عقل مساوات جوگ کی پناہ حاصل کر، کیونکہ سمرے کے خواہش مند لوگ بے انتہا بخیل ہیں۔
بدھی یکتو جہاتی ہے اُبھے سکرت دشکرتے تسمادیوگائے یجسو یوگ کرم سکوشلم۔
عقل مساوات سے مزین انسان عذاب اور ثواب دونوں کو ہی اس دنیا میں ترک کر دیتا ہے، اس میں ملوث نہیں ہوتا، لہذا عقل مساوات جوگ کے لیے کوشش کر، یوگ کرم سکوشلم۔ عقل مساوات کے ساتھ اعمال کرنے کی ہوشیاری ہی جوگ ہے۔ دنیا میں عمل کرنے کے لیے دو نظریے رائج ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں تو ثمرہ بھی ضرور چاہتے ہیں، یا ثمرہ نہ حاصل ہو تو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، مگر جوگ کے مالک شری کرشن ان اعمال کو بندش میں رکھنے والے ہیں، ایسا بتاتے ہوئے عبادت کو ہی عمل مانتے ہیں۔ اس باب میں انہوں نے عمل کا محض نام لیا، باب تین کے نوے شلوک میں اس کی تشریح دی، اور چوتھے باب میں عمل کی شکل پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ پیش کردہ شلوک میں شری کرشن نے دنیاوی رواجوں سے الگ ہٹ کر عمل کرنے کا فن بتایا کہ عمل تو کر، عقیدت کے ساتھ کر، لیکن ثمرے کے اختیار کو اپنی خوشی سے ترک کر دو، ثمرہ جائے گا کہاں؟ یہی اعمال کا انجام دینے کا فن ہے۔ بے غرض ریاضت کش کی پوری طاقت اس طرح عمل میں لگی رہتی ہے، عبادت کے لیے ہی تو جسم ہے، پھر بھی تجسس فطری ہے۔ کیا ہمیشہ عمل ہی کرتے رہنا ہے یا اس کا کچھ نتیجہ بھی نکلے گا؟ اسے دیکھیں۔
کرمجم بدھی یوکتا ہی فلم تیکتوا منیشینہ جنم بندھ ونرمکتا پدم گچھنتینامیم۔
عقلی جوگ سے مزین عالم حضرات اعمال سے پیدا ہونے والے ثمرے کو ترک کر جن اور موت کی بندش سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ مقدس لافانی اعلی مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تینوں عقلوں کا تذکرہ ہے، 31 سے 39۔ سانکھیہ فلسفہ والی عقل میں دو نتیجے ہیں، جنت اور شرف۔ 39 سے 51 عملی جوگ میں لگنے والی عقل کا ایک ہی نتیجہ ہے، آواگون سے نجات، شفاف لافانی مقام کا حصول۔ بس یہ دو ہی جوگ کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ عقل جہالت سے مزین بے انتہا شاخوں والی ہے، جس کا ثمرہ اپنے فعل کے عیش کے لیے بارہا جنم اور موت میں ہے۔ ارجن کی نظر تینوں عوالم کی اقتدار اور دیوتاؤں فرشتوں کے مالکانہ تک ہی محدود تھی، اتنے تک کے لیے بھی وہ جنگ کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں شری کرشن اس کے سامنے ایک نئی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ بے غرض عمل کے ذریعے مقدس مقام حاصل ہوتا ہے، بے غرض عملی جوگ اعلی مقام کو دلاتا ہے جہاں موت کا دخل نہیں ہوتا۔ اس عمل کی طرف جھکاؤ کب ہوگا؟
یدا تے موہ کلیلم بدھرویتریشتی تدا گنتاسی نرویدم شروتویسی شروتسی چا۔
جس دور میں تیری ہر ریاضت کش کی عقل فریب والی شکل کی دلدل کو پوری طرح پار کر لے گی، ذرا بھی فریفتگی نہ رہ جائے، نہ اولاد میں، نہ دولت میں، نہ عزت میں، ان سب سے لگاؤ ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت جو سننے لائق ہے اسے تو سن سکے گا، اور سنے ہوئے کے مطابق بیراق کو حاصل کر پائے گا، یعنی اسے اپنی زندگی میں ڈھال سکے گا۔ ابھی تو جو سننے لائق ہے اسے نہ تو سن پایا ہے، اور برتاؤ کا تو سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ اسی صلاحیت پر پھر روشنی ڈالتے ہیں۔
श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि۔
مختلف قسم کے وید کے جملوں کو سن کر متزلزل ہوئی تیری عقل جب معبود میں مراقب ہو کر
अटल साकिन होकर ठहर जाएगी, तब तू जोगे मुसावात को हासिल करेगा, मुकम्मल मुसावात की हालत को हासिल करेगा, जिसे मुकद्दस आला मकाम कहते हैं। यही जोग का आखिरी अंजाम है और यही गैर हुसूल का हुसूल है। वेदों से तो सबक ही मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण फरमाते हैं, श्रुति विप्रति पन्ना, सुहफे आसमानी के तमाम उसूलों को सुनने से अक्ल मुतजलजिल हो जाती है। उसूल तो तमाम सुने, लेकिन जो सुनने के काबिल है लोग उससे दूर ही रहते हैं। ये मुतजलजिल अक्ल जिस वक्त मुराकबा में कायम हो जाएगी, उस वक्त तू जोग के इंतहा लाफानी मकाम आला को हासिल करेगा। इस बात पर अर्जुन का तजस्सुस लाजमी था कि वो अजीम इंसान कैसे होते हैं जो मुकद्दस मकाम आला में कायम है, मुराकबा में जिनकी अक्ल कायम है। उसने सवाल किया, अर्जुन ओवाचा,
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्।
समाधीयते चित्तम् यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः, जिसमें तबीयत का अजाला किया जाए वो रूह ही मुराकबा है। दाइमी उंसुर में जो मुसावात हासिल करे उसे मुराकिब कहते हैं। अर्जुन ने सवाल किया, केशव, मुराकिब साकिन अक्ल वाले अजीम इंसान के क्या निशानात हैं? मुस्तकिल मिजाज इंसान कैसे बोलता है? वो कैसे बैठता है? वो कैसे चलता है? चार सवालात अर्जुन ने खड़े किए। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्तकिल मिजाज इंसान की निशानी बताते हुए कहा, श्री भगवान वाच,
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते।
पार्थ, जब इंसान दिल में मौजूद तमाम ख्वाहिशात को तर्क कर देता है, तब वो रूह से ही रूह में मुतमईन हुआ मुस्तकिल मिजाज वाला कहा जाता है। ईसार पर ही रूह का मुकम्मल दीदार होता है। ऐसा रूह में रमने वाला आत्माराम खुद इत्मीनान अजीम इंसान ही मुस्तकिल मिजाज है।
दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते।
जिस्मानी खुदाई और मादी तकलीफों की बिना पर जिसका दिल बेकरार नहीं होता, ऐशो आराम के हुसूल में जिसकी आरजू खत्म हुई है और जिसके लगाव खौफ और गुस्सा खत्म हो गए हैं, गौर फिक्र की आखिरी हद पर पहुंचा हुआ सूफी मुस्तकिल मिजाज कहा जाता है। उसकी दूसरी पहचान बताते हैं,
यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जो इंसान हर जगह शफकत से खाली हुआ, मुबारक और नामुबारक को हासिल करने के बाद ना तो खुश होता है ना दुश्मनी ही करता है, उसकी अक्ल मुस्तकिल है। मुबारक वो है
جو معبود کی شکل کی طرف راغب کرتا ہے، نامبارک وہ ہے جو دنیا کی طرف جانے والا ہوتا ہے، لیکن مستقل مزاج انسان مناسب حالات سے نہ خوش ہوتا ہے اور نہ غیر مناسب حالات سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ قابل حصول چیز نہ اس سے جدا ہے اور نہ گمراہ کرنے والی عیوب ہی اس کے لیے ہیں، یعنی اب وسیلے سے خود اس کا کوئی مطلب نہیں رہا، ایسا انسان مستقل مزاج کہا جاتا ہے۔
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जिस तरह कछुआ अपने सारे आजा को समेट लेता है, ठीक वैसे ही ये इंसान جب ہر طرف سے اپنے حواس کو سمیٹ لیتا ہے تب اس کی عقل مستقل ہوتی ہے۔ خطرے کو دیکھتے ہی جس طرح کچھوا اپنے سر اور پیر سمیٹ لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جو انسان موضوعات میں متحرک حواس کو سب طرف سے سمیٹ کر دل کی دنیا میں قید کر لیتا ہے، اس دور میں اس انسان کی عقل راسخ ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو محض ایک نظیر ہے، خطرے کا احساس ختم ہوتے ہی کچھوا تو اپنے اعضاء کو پھر پھیلا دیتا ہے۔ کیا اسی طرح مستقل مزاج انسان بھی موضوعات میں لطف لینے لگتا ہے؟ اس پر فرماتے ہیں،
وشیا ونیورتنتے نراہارسیہ دیہنا रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
हवास के जरिए मौजूआत को ना हासिल करने वाले इंसानों के मौजूआत तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कबूल ही नहीं करते, लेकिन उनका लगाव खत्म नहीं होता, हवस बनी रहती है। सारे हवास को मौजूआत से समेटने वाले بے غرض عامل کی انسیت بھی پرم درستوا انصر اعلی پروردگار کا دیدار کر کے نجات پا لیتی ہے۔ عظیم انسان کچھوے کی طرح اپنے حواس کو موضوعات میں نہیں پھیلاتا، ایک بار جب حواس سمٹ گئے تو تاثرات بھی مٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔ بے غرض عملی جوک کے برتاؤ کے ذریعے معبود کے روبرو دیدار کے ساتھ اس انسان کا موضوعات سے لگاؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ راہ ریاضت میں ہٹ کرتے ہیں، ہٹ ایک جوگ ہے، ہٹ سے حواس روک کر وہ موضوعات سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، لیکن من میں ان کی فکر لگاؤ بنا رہتا ہے۔ یہ لگاؤ پرم دستوا معبود کا دیدار کرنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، اس کے پہلے نہیں۔ قابل احترام مہاراج جی اس کے متعلق اپنا ایک واقعہ بتایا کرتے تھے۔ گھر چھوڑنے سے پہلے انہیں تین بار ندائے غیب ہوئی تھی۔ ہم نے عرض کیا، مہاراج جی آپ کو ندائے غیب کیوں ہوئی، ہم لوگوں کو تو نہیں ہوئی؟ تب اس پر مہاراج جی نے ارشاد فرمایا، ہو ای شنکا موہوں کے بھئی رہی، یعنی یہ شبہ مجھے بھی ہوا تھا، تب تجربے میں آیا کہ میں سات جنم سے لگاتار سادھو ہوں، چار جنم تو سادھوؤں سا لباس پہنے، تلک لگائے، کہیں بھبوتی پوتے، کہیں کشکول لیے گھوم رہا ہوں، جوک کا طریقہ معلوم نہیں تھا، لیکن گزشتہ تین جنم سے بہتر سادھو ہوں، جیسا ہونا چاہیے۔ مجھ میں ریاضت جوگ بیدار تھی، پچھلے جنم میں نجات کے قریب پہنچ چکا تھا، تقریباً نجات ملنے ہی والی تھی، لیکن دو خواہشات باقی رہ گئی تھیں، ایک عورت اور دوسری گانجا۔ ضمیر میں خواہشات تھیں، لیکن باہر سے میں نے جسم کو راسخ رکھا، من میں ہوس لگی ہوئی تھی، لہذا جنم لینا پڑا۔ جنم لیتے ہی معبود نے تھوڑے ہی وقت میں سب کچھ دکھا سنا کر چھٹی دلا دی، دو تین تماچا دیا
और साधु बना दिया। फिर यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि हवास के जरिए मौजूआत का असर ना कबूल करने वाले इंसान के भी मौजूआत तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन रियाजत के जरिए अजीमुल मर्तबत इंसान माबूद का दीदार कर लेने पर वो मौजूआत के लगाव से भी छुटकारा पा लेता है। लिहाजा जब तक दीदार ना हो अमल करते रहना है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपत प्रीति सरित सो बही। हवास को मौजूआत से समेटना मुश्किल तलब है, इस पर रोशनी डालते हैं।
यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
कौन्ते, कोशिश करने वाले जकी इंसान के बेकाबू हवास उसके दिल पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, मुतजलजिल कर देते हैं। लिहाजा
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
उन तमाम हवास पर काबू हासिल करके जोग से मुजयन और खुद सुपुर्दगी के साथ मेरी पनाह में आ, क्योंकि जिस इंसान के हवास काबू में होते हैं उसी की अक्ल रासिक होती है। यहां जोग के मालिक श्री कृष्ण वसीले के ममनुआ आजा के साथ उसके सही उसूल वाले पहलू पर जोर देते हैं। सिर्फ नफ्स कुशी और ममनुआत से हवास काबू में नहीं होते, खुद सुपुर्दगी के साथ माबूद की फिक्र जरूरी है। माबूद की फिक्र की कमी की वजह से दुनियावी फिक्र हावी होगी, जिसके बुरे नताइज श्री कृष्ण के ही अल्फाज में देखें।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते।
मौजूआत की फिक्र करने वाले इंसान की इन मौजूआत में उनसियत हो जाती है, उनसियत से ख्वाहिशात पैदा होती हैं, ख्वाहिशात पूरी होने में खलल पड़ने से गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा किसे पैदा करता है?
क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
गुस्से से खास तरह की जहालत यानी बदअकली पैदा होती है, दायमी और वक्ती चीजों की समझ नहीं रह जाती है। बदअकली से याददाश्त गलत फहमी में पड़ जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। भ्रमतीव च मे मनः, गीता के आखिर में उसने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। क्या करें क्या ना करें इसका फैसला नहीं हो पाता। याददाश्त गलत फहमी में पड़ जाने से जोक की हामिल अक्ल बर्बाद हो जाती है, और अक्ल गुम होने से यह इंसान अपने शर्फ के वसीले से गिर जाता है। यहां श्री कृष्ण ने जोर दिया कि मौजूआत की फिक्र नहीं करनी चाहिए। रियाजत कश को नाम शक्ल फितरत हक और मकाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। याद इलाही में कोताही करने पर मन दुनियावी मौजूआत में उलझ जाएगा, दुनियावी मौजूआत की फिक्र से रगबत हो जाती है, रगबत से इस दुनियावी मौजू की ख्वाहिश रियाजती के जमीर में होने लगती है, ख्वाहिश पूरी होने में खलल पड़ने पर गुस्सा, गुस्से से बदअकली, बदअकली से याददाश्त में गलत फहमी और गलत फहमी से अक्ल गुम हो जाती है। बेगरज अमली जोग को अकली जोग कहा जाता है, क्योंकि अकली सतह पर
اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ خواہشات پیدا ہی نہ ہونے پائیں، سمرا ہے ہی نہیں۔ خواہش پیدا ہونے سے یہ عقلی جوگ برباد ہو جاتا ہے۔ سادھن کریا وچارہین، من شدھ ہوئے نہیں تیسے۔ خیال رکھنا ضروری ہے، خیال نہ کرنے والا انسان شرف کے وسیلے سے نیچے گر جاتا ہے، ریاضت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، پورے طور پر ختم نہیں ہوتا۔ استعمال کے بعد ریاضت وہیں سے پھر شروع ہوتی ہے جہاں پر رکاوٹ آئی تھی۔ یہ تو موضوعات کی طرف راغب ریاضت کش کی حالت ہے۔ خود مختار ضمیر والا ریاضت کش کس انجام کو حاصل کرتا ہے، اس پر شری کرشن کہتے ہیں،
راگ دویش ویوکتیستو विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
रूह को हासिल करने वाले तरीकों से बाखबर बदी ही दीदार करने वाला अजीम इंसान ख्वाहिश और हसद से खाली काबू में किए गए अपने हवास के जरिए विषयान चरण دنیاوی موضوعات میں سفر کرتا ہوا بھی پرساد مدھیگچھتی ضمیر کی پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے، اس کی نظر اپنے اوپر پوری طرح رہتی ہے۔ عظیم انسان کے لیے مقررہ طریقے کی پابندی نہیں رہ جاتی، اس کے لیے کہیں نامبارک نہیں رہتا جس سے وہ خود کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے کوئی مبارک چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی وہ خواہش کرے۔
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।
رب کے مکمل رحم و کرم ربانیت سے مزین ہونے پر اس عظیم انسان کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دکھالیم اشاشوتم، دنیاوی موضوعات کی ضروریات ختم ہو جاتی ہیں، اور اس خوش مزاج انسان کی عقل جلد ہی اچھی طرح ساکن ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جوگ سے مزین نہیں ہیں ان کی حالت پر روشنی ڈالتے ہیں۔
ناستی بدھیرایوکتسیا न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्।
जोग की रियाजत से खाली इंसान के बातिन में बेगरज अमल वाली अक्ल नहीं होती, इस नाहल के जमीर में एहसास भी नहीं होता। एहसास से खाली इंसान को सुकून कहां اور بنا سکون والے انسان کو آرام کہاں۔ جوگ کی ریاضت کرنے سے کچھ دکھائی پڑنے پر ہی خیال بنتا ہے، جانے بینو نہ ہوئی پرتیتی۔ سوچ کے بغیر سکون نہیں ملتا، اور سکون سے خالی انسان کو آرام یعنی دائمی ابدی کا حصول نہیں ہوتا۔
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि।
पानी में कश्ती को जिस तरह हवा अपने कब्जे में लेकर उसकी मंजिल से दूर कर देती है, ठीक उसी तरह دنیاوی موضوعات میں مبتلا حواس میں جس حس کے ساتھ من رہتا ہے، وہ ایک ہی حس اس نااہل انسان کی عقل کو اغوا کر لیتی ہے۔ لہذا جوگ کا عمل لازمی ہے۔ عملی برتاؤ پر شری کرشن پھر زور دیتے ہیں۔
تسمادیسیہ مہاباہو निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
लिहाजा ऐ बाजुए अजीम, जिस इंसान के हवास हवास के मौजूआत से पूरी तरह काबू में किए हुए होते हैं उसकी अक्ल मुस्तकिल होती है। बाजू अमली दायरे की अलामत है। माबूद बाजुए अजीम और बाजुए तवील कहे जाते हैं। वो बिला दस्त पाके सभी जगह काम करते हैं। उनमें जो दाखिला पाता है या जो उसी रब्बानियत की जानिब बढ़ रहा है वो भी बाजुए अजीम है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को बाजुए अजीम कहा गया है।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि।
तमाम मादी जानदारों के लिए वो माबूद शब की तरह है क्योंकि दिखाई नहीं देता ना सोच ही काम करती है, लिहाजा शब की तरह है। उस शब में माबूद में नफ्स कुछ इंसान अच्छी तरह देखता है, चलता है, जागता है क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। जोगी नफ्स खुशी के जरिए उसमें दाखिला पा जाता है। जिस फानी दुनियावी ऐशो इशरत के लिए तमाम जानदार शबो रोज मेहनत करते हैं जोगी के लिए वही शब है। रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। जो जोगी नेक अमल की राह में मुसलसल बाखबर और मादियाती असरात से हर तरह आरी होता है वही उस माबूद में दाखिला पाता है। वो रहता तो दुनिया में ही है लेकिन उस पर दुनिया का असर नहीं पड़ता। अजीम इंसान की बूदोबाश की अक्कासी देखें।
आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकामी।
जिस तरह हर जानिब से लबरेज अटल अजमत वाले समंदर में नदियों का पानी बगैर उसमें हलचल पैदा किए बड़ी तेजी से उसमें समा जाता है, ठीक उसी तरह माबूद में कायम मुस्तकिल मिजाज इंसान में सारे ऐश बगैर कोई खराबी पैदा किए समा जाते हैं। ऐसा इंसान आला सुकून को हासिल करता है ना कि ऐशो इशरत को चाहने वाला। खौफनाक बहाव वाली हजारों नदियों की धाराएं फसल को तबाह करती हुई, दुश्मन जां बनती हुई, शहरों को गर्क करती हुई, तहलका मचाती हुई बड़ी तेजी से समंदर में गिरती हैं मगर समंदर को ना एक इंच ऊपर उठा पाती हैं और ना गिरा ही पाती हैं बल्कि उसी में तहलील हो जाती हैं। ठीक उसी तरह मुस्तकिल मिजाज अजीम इंसान की तरफ तमाम ऐशो इशरत की चीजें उतने ही जोरदार ढंग से आती हैं लेकिन उसी में तहलील हो जाती हैं। इन अजीम इंसानों में मुबारक ख्वाह ना मुबारक तासुरात नहीं हो पाते। जोगी के अमल ना शफाफ होते हैं ना सियाह क्योंकि जिस तबीयत पर तासुरात असरअंदाज होते हैं वो पाबंद और तहलील हो गई, उसके साथ ही रब्बानियत की हालत आ गई। अब तासुर पड़े भी तो कहां। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई सवालात का हल निकाल दिया। उनका तजस्सुस था कि मुस्तकिल मिजाज अजीम इंसान की पहचान क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही लफ्ज में जवाब दिया कि वो समंदर के मानिंद होते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि उसूल की पाबंदी नहीं होती, ऐसे उठो बैठो और ऐसे चलो, वही आला सुकून को हासिल करते हैं क्योंकि वो नफ्स खुश हैं। ऐश इशरत की ख्वाहिशात वाला सुकून हासिल नहीं करता, फिर उसी पर जोर देते हैं।
विहाय कामान्य सर्वान् उमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति।
जो इंसान सारे ख्वाहिशात को तर्क कर निर्मम संग दिल यानि मैं और मेरे एहसास व गुरूर और दुनियावी लगाव से मुबर्रा होकर बर्ताव करता, वो इस आला सुकून को हासिल करता है जिसके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।
पार्थ, मजकूरा बाला हालात माबूद को हासिल करने वाले इंसान की हालत है। समंदर की तरह इन अजीम इंसानों में दुनियावी मौजूआत नदियों की तरह तहलील हो जाते हैं। वो पूरी तरह से मुत्तकी और माबूद का बदी ही दीदार करने वाले हैं। सिर्फ अनल हक पढ़ लेने से या जबान जद कर लेने से यह हालत नहीं मिलती, बजरिए अमल ही उस माबूद की हालत को हासिल किया जाता है। ऐसा अजीम इंसान खुदाई अकीदत पर कायम रहते हुए जिस्म के आखिर वक्त में भी खुदाई मसरत को ही हासिल करता है। मगज़े सुखन निष्कर्ष। आम तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे बाब में गीता तकमील को पहुंच गई, लेकिन अमल का महज नाम लेने से अमल पूरा हो जाता हो तब तो गीता का अकीर माना जा सकता है। इस बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, बेगरज अमली जोग के बारे में सुन, जिसे जानकर तू दुनियावी बंदिश से आजाद हो जाएगा। अमल करना तेरी इख्तियार में है, समरा में कभी नहीं। अमल करने में तू लाअकीदत भी ना हो, मुसलसल तौर पर करने के लिए तैयार हो जा, उसके समरा में तू परम दृष्टव आला इंसान माबूद का दीदार कर मुस्तकिल मिजाज बनेगा, आला सुकून हासिल करेगा। लेकिन इसका खुलासा नहीं किया कि अमल है क्या। ये सांख्य योग, इल्मी योग नाम का बाब नहीं है। यह नाम शरीयत के मुसन्निफ का नहीं बल्कि शरह नवीसों की देन है। वो अपनी अक्ल के मुताबिक ही बातों को समझते हैं तो ताज्जुब क्या है। इस बाब में अमल की अहमियत, उसको अंजाम देने में बरती जाने वाली होशियारी और बाखबर मुस्तकिल मिजाज की पहचान बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के दिलो दिमाग में अमल के मुतालिक दिलचस्पी पैदा की है। उसे कुछ सवालात दिए हैं। रूह दायमी है, अबदी है, इसका अमल हासिल कर रमज शनास बन। इसके हुसूल के दो तरीके हैं, इल्मी जोग और बेगरज अमली जोग। अपनी कुव्वत को समझकर नफा नुकसान का खुद फैसला लेकर अमल में लग जाना राह इल्म है, और इलाह पर मुनहसिर होकर खुद सुपुर्दगी के साथ इसी अमल में लग जाना राह बेगरज अमल ख्वाह राह अकीदत है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का इजहार इस तरह किया है। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। दो तरह के लोग मुझे याद करने वाले हैं, एक राह इल्म वाले, दूसरे राह अकीदत वाले। बेगरज अमल का राही या राह अकीदत का राही मेरी पनाह लेकर मेरे सहारे चलता है। इल्म का जोगी अपने सलाहियत के मद्देनजर अपने नफा नुकसान पर गौर करके अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के दुश्मन एक ही हैं। इल्म के राही को ख्वाहिश, गुस्सा वगैरह दुश्मनों पर फतेह हासिल करनी है, और बेगरज अमल के जोगी को भी इन्हीं से जंग करनी है। ख्वाहिशात का इसार दोनों करते हैं और दोनों राहों में किया जाने वाला अमल भी एक ही है। इस अमल के समरा में आला सुकून को हासिल कर लेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि अमल है क्या। अब आपके सामने भी अमल एक सवाल है। अर्जुन के मन में भी अमल के लिए तजस्सुस पैदा हुआ। तीसरे बाप के शुरू में ही उसने अमल के मुतालिक सवाल पेश किया। लिहाजा ओम तत्स्यदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता की शक्ल में उपनिषद व इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालमे में अमली तजस्सुस कर्म जिज्ञासा नाम का दूसरा बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीता या यथार्थ गीता भाष्य कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में अमली तजस्सुस कर्म जिज्ञासा नाम का दूसरा बाब मुकम्मल हुआ।